नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की आज से नई दिल्ली यात्रा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम शुरू। 100 से अधिक भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधिमंडल आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे और चांदी की कीमतें प्रति किलोग्राम 3 लाख रूपये से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। सोना भी प्रति 10 ग्राम 1,44,000 रूपये से अधिक हुआ। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव शिरकोस्की के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि पोलैंड के लिए भारतीय क्षेत्र अनजान नहीं है और वो सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालीन चुनौती से भलीभांति परिचित है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमेरिका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था।
पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूँ।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य यूरोप में पोलैंड भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $7 अरब है, जिसमें पिछले एक दशक में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पोलैंड में भारतीय निवेश $3 अरब से अधिक हो गया है, जिससे पोलैंड में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, उसके बाजार का आकार और निवेश केंद्रित नीतियां पोलैंड के कारोबारियों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराती हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वे भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते जैसे ढांचों द्वारा सहायता प्राप्त मजबूत और बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाती है। वार्ता में पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के हाल के बयानों के बीच यूरोपीय नेताओं ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्होंने नेटो के सचिव जनरल मार्क रट और फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी तथा इटली के नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सभी ने रणनीतिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वचनबद्धता व्यक्त की है और यूरोप एकजुटता और पूरे संकल्प के साथ जवाब देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचारों, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है और देश के विकास या गरीबों के कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये अधिनियम पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके दायरे में आएगी। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है।
100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत 10 करोड़ संपत्तियां सृजित की गई, जिनमें से 8.5 करोड़ संपत्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सृजित की गई हैं। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों और गरीबों को प्राथमिकता दी गई है। श्री चौहान ने यह भी बताया कि नए अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 4 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही है। एक रिपोर्ट।
नामांकन पत्रों की जांच आज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी। इसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कल मतदान होगा और नए भाजपा अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
निर्वाचन आयोग बुधवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 3 दिन का ये सम्मेलन लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें विश्व के 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए आज सुबह तलाश अभियान फिर शुरू किया। इस काम में सेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया है। हमारे जम्मू संवाददाता के अनुसार इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने कल चतरू क्षेत्र के मंडराल सिंहपोरा के पास सोनार गांव में अभियान शुरू किया। इस दौरान गोलीबारी और आतंकवादियों के अचानक ग्रेनेड हमले में 8 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दुर्गम इलाके और कम दृश्यता के कारण देर रात अभियान रोकना पड़ा था। आज तड़के सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमों ने अभियान फिर से शुरू किया और घेराबंदी सख्त कर दी। खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के संदेह में 2 से 3 आतंकवादी इलाके में मौजूद हैं। अभियान जारी है, ब्यौरे की प्रतीक्षा है। महाराष्ट्र में नाशिक जिले में आज मालेगांव मनमाड़ राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 20 से अधिक यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। पुणे से मालेगांव जा रही एक निजी ट्रेवल बस के मालेगांव तालुका के वरहाने गांव के पास तड़के 3 बजे पिकअप वाहन से टकराने से ये दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इसमें 3,000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के रामाव नायडू सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों के पवेलियन भी वहां लगाए गए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की दावोस यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री नारा लोकेश और टीजी भरत तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। इस यात्रा का उद्देश्य वैश्विक निवेश आकर्षित करना और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश में लोग तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। सरकार प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से गेहूं, मक्का, जौ और कच्ची हल्दी खरीदकर हिमभोग ब्रांड के अंतर्गत उनका विपणन कर रही है। ये उपज 100% रसायन मुक्त और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सोने और चांदी की कीमतें आज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड विवाद को लेकर कई यूरोपीय देशों पर नए शुल्क लगाने की धमकी के बाद बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में ये तेजी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का मूल्य 1.68% बढ़कर 1,44,905 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमतें भी 4.39% बढ़कर 3,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार इस वर्ष दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार में पद्म पानी स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2,00,000 रूपये की नकद राशि शामिल है। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि देश की विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स ने वर्ष 2024-25 में 2700 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दर्ज किया है। आईआईटी दिल्ली परिसर में विद्युत तथा विनियमन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में विद्युत अधिनियम में संशोधन लाएगी, जिससे इस क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के आंदोलन में सराहनीय भूमिका निभाई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका जीवन हर पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा।
आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरिजी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था।
मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कल तक शीतलहर की स्थिति का भी अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिन में पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम शुरू। 100 से अधिक भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधिमंडल आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे और चांदी की कीमतें प्रति किलोग्राम 3 लाख रुपए से अधिक की ऊंचाई पर पहुंची। सोना भी प्रति 10 ग्राम 1,44,000 रुपए से अधिक हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।